In this Easter season, we reflect upon and rejoice in the redemption provided by our Savior, Jesus Christ. The clamor that reverberates across the earth because of worldly wickedness creates feelings of vulnerability. With modern communication, the impact of iniquity, inequality, and injustice leave many feeling that life is inherently unfair. As significant as these trials can be, they must not distract us from rejoicing in and celebrating Christ's supernal intercession in our behalf. The Savior literally gained the victory over death. With mercy and compassion, he took upon himself our iniquity and transgressions, thus redeeming us and satisfying the demands of justice for all who would repent and believe on his name. His magnificent atoning sacrifice is of transcendent significance.
उसके अद्भुत प्रायश्चित बलिदान की श्रेष्ठ को समझना हम नश्वर लोगों के लिए कठिन है. अनुग्रह का ये कार्य ऐसी शांति प्रदान करता है जो समझ से बिल्कुल परे है. फिर हम कैसे उन कठोर सच्चाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमारे चारों ओर है. मेरी पत्नी मैरी ने हमेशा सूरजमुखी के फूल पसंद किया है. वे आनंदित होती है जब वे एकदम असंभव स्थानों सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं. जहां मेरे दादा दादी का घर है वहां जाने की सड़क कच्ची है. जब हमने उस सड़क पर जाते हैं मैरी अक्सर पूछती है, क्या तुम सोचते हो आज हमें वे खूबसूरत सूरजमुखी के फूल दिखाई देंगे. हमें आश्चर्य होता है कि सूरजमुखी के फूल ऐसी मिट्टी पर बहुतायत से होते हैं जो कि खेती बाड़ी और बर्फ हटाने के उपकरणों से प्रभावित होते हैं और जिसमें ऐसे पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं.
Despite the many terrible circumstances that surround us, he truly is our light and life. In the parable of the wheat and the tares, the Savior declared.
गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत में उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों को बताया था कि उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा किया जाएगा. लेकिन विश्वासियों के विषय में मैं बोलता हुए उसने कहा था, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेगी. मसीह के शिष्यों के रूप में ऐसे प्रतिकूल संसार में रहते हुए जो सच में बहुत अशांति का अवस्था में है, हम फल फूल और खिल सकते हैं यदि हमारी जड़ें मजबूती से उद्धारकर्ता के प्रति हमारे प्रेम जमी होंगी और विनम्रता से उसकी शिक्षाओं का पालन करेंगे. सच और मजबूती के अडिग रहने और जीवन के उतार चढ़ाव के होते हुए उद्धारकर्ता का अनुसरण करने हमारी योग्यता को धार्मिक परिवारों और हमारी वार्ड और शाखाओं में मसीह केंद्रित एकता से अत्यधिक ताकत मिलती है. परमेश्वर की योजना में परिवार की भूमिका हमारे लिए खुशी लाना, प्यार भरे माहौल में सही सिद्धांतों को सिखाना और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करना है. घर में धार्मिक गतिविधियों को सुंदर परंपराओं को हमारे बच्चों के हृदय में डालने की जरूरत है. मैं अंकल वॉगन रॉबर्ट्स किम्बल के अच्छे विद्यार्थी लेखक बनने के महत्वाकांक्षी और BYU में फुटब�ल खेलते थे. 4 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण होने के एक दिन बाद वे US नेवी में चले गए. एल्बनी न्यूयॉर्क में भर्ती के समय उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट में एक लेख छपने दिया. पत्रिका ने उन्हें $200 दिए थे और उनके लेख को मई 1944 में अंक में द राइट टाइम एट होम शीर्षक से छपा था।
मेरा यूटा घड़ी का समय दिखा रही है। मैं दक्षिण यूटा का हूँ। जब मैं नेवी में भर्ती हुआ था तब मेरे पिता ने मुझे ये घड़ी दी थी। उन्होंने कहा था मुझे घर का याद रखने में मदद मिलेगी। जब मेरी घड़ी सुबह 5 दिखाती है मुझे पता चलता है कि मेरे गाय पिताजी गाय के दूध निकालने गए हैं, और रात को जब 7:30 बजे दिखाती है मुझे पता चल जाता है कि पूरा परिवार खाने की मेज पर चारों ओर बैठा है और पिता भोजन के लिए परिवार परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है और मुझे मेरी देखभाल के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा मैं जान सकता हूँ किस समय मैं पर्याप्त रूप से सहज हो सकता हूँ। मैं यह जानने को चाहता हूँ यूटा में क्या समय हुआ है। इस लेख के छपने के तुरंत बाद युवान को प्रशांत महासागर खड़े जहाज में नियुक्त किया गया। जहाज में 2 आत्मघाती हमले हुए और मेरे अंकल वॉगन सहित 400 लोग मारे गए। एल्डर स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने अपनी हार्दिक सहानुभूति वॉन के पिता को दी थी। वॉन की या उनके योग्यता और प्रभु के आश्वासन को बताते हुए जो कि मुझ में मरते हैं मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे क्योंकि यह देखने उनके लिए मधुर होगी। वॉन के पिता ने निम्रता से कहा था बेशक वॉन का शरीर सबुन में दफन हो गया है, परमेश्वर के हाथ वॉन को उसके स्वर्गीय घर पहुंचाएंगे। 28 साल के बाद अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने वॉन के विषय में एक महासम्मेलन में बोला था। उन्होंने कहा था मैं इस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं, मैंने उनके साथ गंभीर प्रार्थना की है। घर की शिक्षाओं के कारण इस बड़े परिवार में अनंत शिक्षाएं आशीषें आई थी। अध्यक्ष किम्बल ने प्रत्येक रविवार को घुटने के बलों झुककर दिन में 2 अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करने की चुनौती दी थी। भाइयों और बहनों, यदि हम विश्वसनीय रूप से अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना, धर्मशास्त्र अध्ययन, पारिवारिक आशीषें, सबद के दिन का पालन करने, तो हमारे बच्चे जान जाएंगे कि घर में इस समय क्या हुआ है। वे स्वर्ग में अनंत घर के लिए तैयार रहेंगे चाहे इस कठिन संसार में उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो। हमारे बच्चों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि घर में उनसे प्रेम किया जाता है जहां वे सुरक्षित हैं। पति और पत्नी एक समान सहभागी हैं। वे अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरा मिलकर करते हैं। पत्नी बच्चों को जन्म देती है जिसका पूरा परिवार आशीष होता है। पति पौरत्य प्राप्त कर जो संपूर्ण परिवार को आशीष करता है, लेकिन पारिवारिक परिषद में पत्नी एक समान सहभागी हैं। मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और उन्हें कैसे अनुशासित किया जाएगा, पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, वे कहाँ रहेंगे, अन्य बहुत से पारिवारिक फैसले। यह सब निर्णय मिलकर प्रभु के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। उद्देश्य यह है एक अनंत परिवार। मसीह का प्रकाश उसके सभी बच्चों के हृदय में अनंत परिवार की प्रकृति को डालता है। मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक जो हमारे धर्म का नहीं है इस प्रकार का है, जीवन में बहुत कुछ चीजें महत्वहीन है लेकिन परिवार की एक सच्चाई अति महत्वपूर्ण अनंत चीज, एक वस्तु का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए, इसके प्रति वफादार रहना चाहिए। गिरजे में हमारे उद्धारकर्ता का संगठित परिवार के रूप में केंद्रित रहने में सहायता रहता है। परिवार के अतिरिक्त गिरजे की भूमिका महत्वपूर्ण है। गिरजा परमेश्वर के सभी बच्चों को विशेष यीशु मसीह के सुसमाचार खिजाने के लिए माध्यम और संगठन उपलब्ध है, या उनके उद्धार के लिए उत्कर्ष की रीतियों को पूरा करने के लिए पुरोहित अधिकार उपलब्ध करता है जो योग्य हैं उनको स्वीकार करने की इच्छा करते हैं। संसार में व्याप्त विवाद, अनेकता, विभिन्न संस्कृतियों, असमानताएं पर अधिक जोर दिया जाता है। गिरजे में भाषा इकाइयों के अलावा हमारे वार्ड और शाखाएं भौगोलिक है। हम क्लास या पद के अनुसार विभाजित नहीं करते। हम इस सच्चाई में आनंदित होते हैं कि सभी जातियां और संस्कृतियां एक धार्मिक समूह में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे वार्ड परिवार के लिए हमारा विकास खुशी और मसीह के समान बनने के व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है। संस्कृति में अक्सर लोगों को बांटती है, कभी कभी हिंसा और भेदभाव का एक स्रोत होता है। मॉर्मन की पुस्तक में भ्रष्ट पिताओं की परंपराओं की व्याख्या करने के लिए अत्यधिक परेशान करने वाली भाषा उपयोग की गया है, जो हिंसा, युद्ध, बुरे कार्य, अधर्म, लोगों के और राष्ट्रों के विनाश की ओर ले जाती है। धर्मशास्त्रों में गिरजे की संस्कृति की व्याख्या करने के लिए चार नफी से उत्तम आरंभ करने के स्थान कोई नहीं है, जो कि हमारे लिए सब जरूरी है। आयत 2 में कुछ इस तरह लिखा है, पूरे प्रदेश के लोग नीफाई और लमनाई दोनों ही प्रभु में परिवर्तित हुए, उनके बीच कोई विवाद और मतभेद नहीं था और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ न्यायोचित तरीके से संबंध बनाया। 16 आयत में हम पढ़ते हैं, और जितने लोग परमेश्वर के हाथों रचे गए हैं उन सारे लोगों में निश्चय ही इन लोगों से अधिक कोई भी आनंदमय नहीं था। यह सच्चाई कि उनके बीच कोई विवाद ना था परमेश्वर उनके प्रेम के कारण था जो उनके लोगों के हृदय में बसा था। इसी संस्कृति की हम इच्छा रखते हैं। गहरे सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास उनका मूल अधिकार है जो हमें है। बलिदान, आभार, विश्वास और धार्मिकताओं की परंपरा का सुजोग कर और बचा कर रखी जाती है। परिवारों का उन परंपराओं का हमारा लेना चाहिए और सुरक्षित रखी जा निर्माण करती है। किसी भी संस्कृति में अति महत्वपूर्ण विशेषता उनकी एक भाषा है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जहां मैं रहता था वहां 7 इकाइयां गैर निवासी भाषाओं की थी। भाषा के संबंध में हमारा सिद्धांत और अनुबंध के खंड 90 की आयत 11 में निर्धारित किया है, क्योंकि ऐसा होगा उस दिन प्रत्येक व्यक्ति सुसमाचार की परिपूर्णता को अपनी स्वयं की जबान और अपनी स्वयं की भाषा में सुनेगा। जब परमेश्वर के बच्चे अपने मातृभाषा में प्रार्थना करते हैं वे भाषा उनके हृदय की भाषा है। यह स्पष्ट है कि हृदय की भाषा सभी लोगों के लिए बहुत प्रिय होती है। मेरा बड़ा भाई जोसेफ एक डॉक्टर है और कई सालों से सैन फ्रांसिस्को के बे में अभ्यास कर रहा है। गिरजे का एक वृद्ध सोमन सदस्य जो कि बीमार था उसके क्लिनिक में आया। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। यह पता लगा कि उसकी किडनी में स्टोन था जिसका उचित इलाज किया गया। उस विश्वासी सदस्य ने बताया कि स्वर्गीय पिता से सामोन भाषा में प्रार्थना करने का उसका लक्ष्य केवल यह था कि वह जान सके कि उसके शरीर में क्या तकलीफ है। सदस्यों के लिए सुसमाचार को अपने हृदय की भाषा में समझना महत्वपूर्ण है ताकि वे सुसमाचार के सिद्धांतों के अनुसार प्रार्थना और कार्य कर सकें। भाषाओं की विविधता और सुंदर प्रेरणादायक सांस्कृतिक परिणाम के होते हुए भी हमारा हृदय एकता और प्रेम में एक होना चाहिए। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाई को अपने भाई का समान आदर करना चाहिए। एक रहो और यदि तुम एक नहीं हो तो तुम मेरे नहीं हो। जब हम उचित सांस्कृतिक विधाओं को संजोज कर रखते हैं हमारा लक्ष्य सुसमाचार संस्कृति रिवाजों और परंपराओं में हर तरह से एक होना है। हम जानते हैं कि कुछ सदस्यों के पास सवाल और चिंताएं होती हैं जब वे अपने विश्वास और गवाही को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। हमें उनकी चिंताओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें उनकी आलोचना नहीं करें ना ही कोई अनुमान लगाएं। चिंताएं चाहे छोटी हो बड़ी हो, इसके साथ साथ उन लोगों को भी जिनके पास चिंताएं हैं अपने विश्वास को अपने गवाही को निर्माण करने के लिए हर संभव प्रयास करनी चाहिए। धैर्य और विनम्रता से सुसमाचार सिद्धांतों का अध्ययन करना, मनन करना, प्रार्थना करना, जीने से और उचित मार्गदर्शन से सलाह लेना और सवालों और चिंताओं को अच्छी तरह दूर किया जा सकते हैं। कुछ स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में अधिक संख्या गिरजे को छोड़ रहे हैं। आजकल पहले से अधिक संदेह और विश्वास है। यह बिल्कुल नहीं है। अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा कभी भी मजबूत नहीं रहा। गिरजे के रिकॉर्ड से यह नाम हटाने वालों की संख्या हमेशा बहुत ही थोड़ी थी और वर्तमान समय में यह बहुत ही कम है। कई क्षेत्रों में जैसे मंदिर स्तुति के साथ इनडोर सदस्य, वयस्क पुरुष पूरा दशमांश देने वाले सदस्य, मिशन में सेवा करने वाले सदस्यों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मैं फिर से कहना चाहता हूं अंतिम दिन के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर कभी नहीं रहा है। लेकिन याद रखें लोगों का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में महान है। हम सब तक पहुंचते हैं। यह यदि कठिन सताइयां जिनका आप कभी सामना कर रहे हैं अंधकार में और भारी और लगभग असहनीय लगती हैं, तो गतसमने की अत्यंत कष्टदायी आत्मा और कलवरी की समझ से परे अत्याचार और दर्द को याद करें। जिससे उद्धारकर्ता ने प्रायश्चित को पूरा किया, जो इस जीवन में होने वाले सबसे भयानक बोझ को दूर करता है। उसने इसके लिए इसे आपके लिए किया था, उसने इसे मेरे लिए किया था, उसने इसे किया था क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वह अपने पिता की आज्ञा का मानता है और उसे प्रेम करते हैं। हमें मृत्यु से बचाया जाएगा, समुद्र की गहराइयों से भी। इस जीवन में और अनंत काल में हमारी सुरक्षा व्यक्तिगत और पारिवारिक धार्मिकता गिरजे की विधियों और दुर्गता उद्धारकर्ता का पालन करने में आती है। यह एक तूफान में हमारा शरण स्थल है। वो जो महसूस करते हैं कि वह अकेले हैं, आप यह जानते हुए अधिक रूप से धार्मिकता में डटे रहे कि प्रायश्चित आपको जितना आप समझते हैं उससे अधिक सुरक्षा और आशीष देगा। आपको उद्धारकर्ता का स्मरण रखें, उनका अनुबंध का पालन करें, परमेश्वर के पुत्र का अनुसरण करें, और जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य के प्रकाश का अनुसरण करता है, उसके प्रकाश और उदाहरण का अनुसरण करें। करने से हमें आनंद और सुख और शांति मिलती है, जैसे भजन संहिता 27 में और एक प्रिय स्तुति कहता है, द लॉर्ड इज माई लाइट। ईस्टर के इस सप्तांत को उद्धारकर्ता के प्रेरित के रूप में मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महत्वपूर्ण गवाही देता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह जीवित है, मैं उसकी आवाज को पहचानता हूँ, मैं उसकी दिव्यता और उसकी प्रायश्चित की सच्चाई की गवाही देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।